ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा रिफ्रेश हो गए। दीदी से भी मिला, दीदी का जन्मदिन मनाया, मधुबन आ गए इतने 8 महीने के बाद। तो 2 दिन से मधुबन में भी भट्टी का आनंद ले रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन के बाद फिर से हम ज्ञान योग से अपने आप को भरपूर करेंगे। आज हम सबके बीच में मोहन सिंगल भाई जी हैं, चेयरपर्सन है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग की, और आप 1962 में इस ईश्वरीय मार्ग में अपने ज्ञान प्राप्त किया। साकार मम्मा बाबा की पालना लेते हुए आप पढ़ाई पूरा करके और ONGC में आपने जॉब भी किया, फिर उसके बाद आप अपने जीवन को इस ईश्वरीय मार्ग में समर्पित किया और बहुत सारे पदयात्राएं भी की भाई साहब ने, और पर्यावरण के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इस विंग के द्वारा। उतने ही आप अपनी धारणाओं से आत्माओं को लाभान्वित करते रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे भाई जी के अनुभवों से व्यर्थ से मुक्त होने की युक्ति इस विषय पर। मोहन सिंगल भाई जी।
ओम शांति। अभी तो आप सब लोग रिफ्रेश हो रहे थे। अभी हम कुछ सेकंड के लिए थोड़ा यज्ञ के आदि में जाते हैं, और जैसा हम सब ने सुना है कि ब्रह्मा बाबा सबको ओम की ध्वनि कराते थे, अभी तो हम सब ओम शांति बोलते हैं, तो इसीलिए ओम शांति और ओम से मिलता हुआ। तो अंदर पहले गहरा एक श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और उसके बाद फिर दूसरा एक गहरा श्वास लेंगे, उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। और केवल ध्वनि नहीं करेंगे, उस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि जो आज विषय है उसके अनुरूप उन शक्तियों को हम अपने अंदर उनका आवाहन कर सकें। तो पहले गहरी श्वास लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। शांति की मधुर ध्वनि ही है जिसके मनन चिंतन उच्चारण और जिसमें स्थित होने से हम आज के विषय को जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अर्थात मन में जो कुछ भी व्यर्थ चलता है उस व्यर्थ से हम मुक्ति पा सकते हैं। और बाबा ने विधि ही ये बताई है, शायद ही किसी भी दिन की मुरली में ये ना आता हो कि अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। तो इसीलिए ओम शांति की ये ध्वनि ही है, और इस स्थिति में स्थित होकर के हम सबको आज आगे और बढ़ना है और इस विधि को अपने अंदर संयोजित करना है। तो व्यर्थ से मुक्ति, कौन सा व्यर्थ, क्या व्यर्थ चलता है? बाबा ने बहुत बातें बताई हैं, किस चीज से व्यर्थ, तो बाबा ने मोटे तौर पर बताया है हम सबके पास कितने खजाने हैं। और बाबा ने कहा किसी भी खजाने को व्यर्थ नहीं करना है। तो कौन कौन से खजाने हैं? संकल्प, समय, बहुत सब बाबा ने ये बताया है। वाणी है, श्वास है, कर्म है और स्थूल खजाना भी है, वो भी खजाना है। तो समय संकल्प तो है ही सबसे बड़ा खजाना। तो कोई भी खजाना व्यर्थ न जाए उसके ऊपर हम सब लोग विचार करते हुए, और कैसे ये अगर लीकेज होता है तो ये लीकेज हम किस विधि से बंद कर सकते हैं, और उसके लिए जरूर आवश्यकता ये है कि सबसे पहली आवश्यकता तो ये है, कौन सी? अंदर महसूस होना चाहिए कि हाँ ये मेरा खजाना व्यर्थ जा रहा है। नहीं तो खजाने व्यर्थ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जो बाबा ने कहा है, सुबह से हम सोचते हैं कि हमने अमृत वेला भी किया और मुरली भी सुनी, सेवा भी की, और जो जो बाबा कहता है वो कर रहे हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी बहुत हमारा समय रूपी खजाना, संकल्पों का खजाना व्यर्थ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहली तो ये महसूसता अंदर होनी चाहिए कि जब बाबा कहता है, और वो मोटे तौर पे बड़ा सहज पता चल सकता है किस चीज से, अगर हम चार्ट लिखते हैं। अपने चार्ट से थोड़ा पता चल जाएगा, क्योंकि बाबा ने चार्ट में कितने घंटे का लक्ष्य दिया है याद का? कितने घंटे का? 8 घंटे का। तो अगर वो लक्ष्य दिया है तो हम चेक करें, चार्ट लिख रहे हैं अगर तो चेक करें, 8 घंटा हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि हमने भी अपने जीवन में कई बार चार्ट लिखना शुरू कर दिया, कई बार लिखा भी काफी समय तक, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर बाबा की प्रेरणा आती है, फिर लिखते हैं। तो अभी तक तो कभी भी 8 घंटा पहुंचा नहीं, भले हमें 50 साल से ज्यादा हो गए ज्ञान में, लेकिन 8 घंटे तक चार्ट बाबा जो चाहता, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं हमारे संकल्प, समय, शक्तियां, गुण, ये सब कोई ना कोई चीज व्यर्थ जा रही है। तभी तो 24 में से 8 घंटा होनी, बाबा ने कितनी सारी विधियां बताई है। तो इसीलिए एक तो ये महसूसता की शक्ति होनी चाहिए, और इसमें भी कौन सी भी अब महसूसता हमारी, बाबा कहता है दिल की महसूसता। एक होती है दिखावे की महसूसता, जैसे चल रहे हैं मानो किसी से हमारे ठोकर लग गई तो हम बस नॉर्मल वे में कह देते हैं सॉरी भाई, माफ करना वगैरह वगैरह। तो ये एक कस्टमरी जैसी हो गई है, रिवाज हो गया है। लेकिन एक है दिल की महसूसता, अंदर की महसूसता की वास्तव में बाबा जो चाहता है। तो ये दिल की महसूसता हमें हो रही है या दिखावे की थोड़ा बहुत किया फिर हमारा नॉर्मल जीवन शुरू हो गया। तो पहली आवश्यकता है कि दिल की महसूसता, ये तो है अपने लिए। और दूसरा, जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, चाहे भले सेंटर पर रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी कुछ भी करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति भी महसूसता हमें ये होनी चाहिए कि वो दूसरा जो बेचारा है वो भी परवश है अपने संस्कार के कारण। इसलिए हम एक्सपेक्ट तो करते हैं दूसरे से कि दूसरे का ये व्यवहार बदले, उसको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होता है इसलिए मैं भी नहीं बदल पा रही हूँ या बदल पा रहा हूँ। तो इसीलिए एक तो अपने दिल की महसूसता, हाँ यह मेरी कमजोरी, और दूसरा भी विचारा परवश है, कमजोर है अपने पुराने संस्कार के कारण, इस कारण से वो महसूसता दूसरों के प्रति भी होनी चाहिए। ये भी चाहता है बदलना जैसे हम चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं बदल पा रहा है क्योंकि परवश है। जैसे मैं भी आत्मा चाहते हुए भी उतना नहीं बदल पा रही हूँ, तो इस रीति से दूसरे की उस स्थिति की महसूसता। तो पहली आवश्यकता जो बाबा बताते हैं ये है एक महसूसता अंदर की होनी। तो चलो महसूसता नंबर वार सबको अपनी शक्ति प्रमाण तो हो रही है, तभी तो हम आते हैं, भट्टी करने आते हैं, रोज क्लास भी सुनते हैं, सेंटर नहीं भी जा पाते तो भी मोबाइल पर या दूसरे रीति ई मुरली या जो आजकल आप सब लोग अपने अपने घरों में भी सुनते होंगे, तो हम कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये, और जब महसूसता होनी और शुरू हो जाती है, सारे दिन का थोड़ा चार्ट वगैरह भी रखें तो पता चलेगा कितने घंटे हमारे वेस्ट होते हैं। तो दूसरी शक्ति की आवश्यकता है, थोड़ा परिवर्तन की शक्ति। महसूस भी हो गया लेकिन क्या करें महसूस करके, तो महसूस हो जाए उसके बाद फिर हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। और बाबा ने परिवर्तन के लिए तो बहुत बातें बताई हैं और परिवर्तन हुआ भी है। स्थूल रीति से तो हम सबको दिखता है अपने में परिवर्तन, कि हमारे स्वभाव, संस्कार, खान पान, रहन सहन सब में परिवर्तन हुआ है, और वो तो सबको दिखता भी है, हमें भी दिखता है, और इसलिए हमारा जीवन उस रीति से हुआ है। लेकिन ये स्थूल परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन जो सूक्ष्म परिवर्तन बाबा चाहता है, वो परिवर्तन शायद अभी तक उस एक्सटेंट तक नहीं हुआ है, उस सीमा तक नहीं हुआ है जो बाबा चाहता है और जो आवश्यक है हमें पास विद ऑनर होने के लिए। तो इसीलिए परिवर्तन की शक्ति में हमें ये देखना है, जो बाबा ने ऊपर रीति से बताए हैं, और बाबा ने भी देखा, जब बाबा, ये नहीं कि बाबा भी एकदम ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बन गए, ब्रह्मा बाबा ने भी देखा शुरू में, बाबा का जीवन कहानी में है। और जब बाबा गए तो दो डायरियां भी बाबा के पास से यहाँ पर यज्ञ में मिली लच्छू दादी के पास, तो उसमें बाबा ने 1936 की बात है जब स्थापना, और उसके बाद भी बस बाबा का मन भाग जाता था इधर उधर। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए बाबा में तो देखो भगवान आया हुआ, और बाबा भी डबल इंजन जो बोलते हैं ना, लेकिन क्यों ये बाबा कहता है कि हरेक को ये महसूस होना चाहिए अंदर कि ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह ही तो था गृहस्थ, उसके भी पत्नी थे, बच्चे थे, और बिजनेस था, नौकरी धंधा जैसे, और बच्चे, बहुएं, लड़की, दामाद, सब पूरा परिवार जैसे लौकिक का होता है, सब कुछ था। उसके बाद जब बाबा को ये ईश्वरीय ज्ञान हुआ तो परिवर्तन आया, लेकिन वो परिवर्तन नहीं आया जो बाबा चाहता था। बाबा ने देखा वो परिवर्तन, बस बाबा बैठता है ध्यान लगाने के लिए, मन भाग जाता है, कभी बिजनेस भाग गया, कभी परिवार की तरफ भाग गया, कभी बच्चों की तरफ, और ये सब जब हो रहा था तो बाबा को भी बड़ा लगा कि मैंने सब कुछ भी छोड़ दिया है, सब परिवार, फिर भी मेरी बुद्धि क्यों जाती है। तो फिर बाबा ने देखा ये मन भाग रहा है, तो मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और तू तो मेरा मंत्री है, और तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ आत्मा, लेकिन तू ज्यादा बलशाली हो गया और मैं आत्मा कमजोर रह गई और तू बस मुझे इधर उधर भगाता रहा, तू भागता रहा। कहते हैं मन चंचल है, सब तरफ मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बिल्कुल कमजोर बना दिया। फिर सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने लिखा कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है। राजा के कहने पर मंत्री को चलना पड़ेगा। अब मैं कमजोर नहीं बल्कि अब मैं बलशाली होता जा रहा हूं। परमात्मा की शक्ति मुझे और मिल रही है, मिलती जा रही है और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो क्या हमने भी वास्तव में, और फिर बाबा का परिवर्तन हो गया। तो ऐसे हम भी अपने मन से बातें करें, मन को ये लिखें। और बाबा ने लिख लिख करके कितना पक्का किया, आप सबको मालूम ही है पुराने, कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है और राधा आत्मा है, ये सब का ना निर्मला आत्मा है, पूरे परिवार का लड़का लड़की सब लिख लिख के पक्का किया मैं आत्मा हूँ। और केवल लिखने से वो अभ्यास जब हुआ और फिर बाबा जैसे जब देखता था, बस उनको दृष्टि देता था, देखता था तो तुरंत बाबा की दृष्टि भ्रकुटी में ही जाती थी। बाबा को देह दिखते ही नहीं थे कि ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये बच्ची है। और उसका प्रमाण ये होता था कोई, क्योंकि अगर हम में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो प्रमाण होना चाहिए ना। जैसे हम में स्थूल परिवर्तन आए, हमारा वेशभूषा बदल गई, खान पान बदल गया, सब बदल गया, ये प्रमाण है हमारे और दुनिया के सामने। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने जब ये किया तो ये प्रमाण देखने में आता था। जैसे ही बाबा, हम लोग, हमें सौभाग्य मिला है बाबा से के साथ रहने का लगभग 6-7 साल तक, और कई बार बाबा से अलग अलग जगह मिले हैं। और उसमें हमने देखा, जैसे हम जाते थे बाबा से मिलते थे, बाबा देखते थे कि हाँ बच्चे आओ बच्चे, यूं हाथ फैला देते थे और तुरंत ही हम लोग बाबा की बाह में पास एकदम खींच करके चुंबक की तरह आ जाते थे और आत्मा विदेही हो जाती थी। ये परिवर्तन, कहाँ तो सारे दिन भर 24 घंटा देह में रहते हैं, मैं मेरा, ये बात रहती है, लेकिन जैसे ही बाबा दृष्टि देते थे बस हम आत्मा विदेही हो जाती। ये प्रमाण है इस बात का कि बाबा ने अपने को इतना पक्का कर लिया था कि मैं आत्मा हूं, तो उस दृष्टि से बाबा जिसको भी देखते थे वो परिवर्तन। तो एक तो देह के संबंध, देह के पदार्थों से मुक्त होने की ये विधि है कि पहले हम अपने को भी पक्का करें उनके मुक्ति की। ये जैसे बाबा ने अपने को ये पक्का किया, मुक्ति प्रत्यक्ष दिखता था ये देखने में। फिर उसके बाद बाबा ऐसे धीरे धीरे थपथपाता था, हाँ बच्चे आओ आओ, क्योंकि हम सब लोग जैसे विदेही हो जाते थे तो यूं होता था। और उसके बाद फिर बाबा जो है टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था वगैरह वगैरह, फिर एक जाता था दूसरा आता था। तो एक तो ये परिवर्तन में सबसे पहले हम ये देखें कि मैंने भी पक्का किया है, ऐसे लिख लिख करके, बात करके, दूसरे को देख करके, जिस दर भी देखते हैं उसके भ्रकुटी की तरफ दृष्टि जाए, दूसरे के देह की तरफ ना जाए ये। और जब ये देह की तरफ दृष्टि, व्यक्ति वस्तु वैभव बोलते हैं ना, जैसे उनकी तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, इसका मतलब वो परिवर्तन हम में परमानेंट होता जा रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन। तो बाबा ने एक तो ये पुरुषार्थ किया और दूसरा साथ में बाबा ने ये कहा और करा पुरुषार्थ, जो बाबा कहता भी है अभी। क्या कहता है? जो यज्ञ में होता भी था, रोज कचहरी लगती थी, तो बाबा कहता था अपनी कचहरी अपने आप लगाओ, अपने मन बुद्धि संस्कार की, और पूछो हे मन आज तू कहाँ भटक गया, मैंने तो तुझे वहां जाने की आज्ञा नहीं दी थी, तू वहां क्यों कैसे चला गया, कहीं ऐसी जगह जहां पुराने संस्कार हैं वो न चाहते भी खींचते हैं। तो मन की रोज अपने मन बुद्धि संस्कारों की दरबार लगाओ, ये परिवर्तन की एक बहुत स्ट्रांग युक्ति दूसरी है कि जितना जितना हम ये रोज दरबार लगाएंगे, उनको उनसे वार्तालाप करेंगे, तू मेरे बिना पूछे हुए वहां कैसे चला गया, तू वहां पर जाके तूने इतना समय व्यर्थ क्यों गंवाया, और जितना जितना वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट डे से ही आपको आभास होगा कि देखो चार्ट जब लिखते हैं ना, आज लिखा मन चला गया कि भाई आधा घंटे तक मन चला गया वहां पुरानी जगह जहां हम नहीं चाहते थे, जहां हमारा कुछ भाग्य नहीं बनता है। तो अगली बार जैसे ही वो परिस्थिति आएगी चार्ट लिखने की तो तुरंत याद आ जाएगा और कल आधा घंटे मन भागा था, तो आज खुद महसूस होगा कि जल्दी हम अपने को विड्रॉ कर पा रहे हैं, 20 मिनट ही लगा हमें मन को विड्रॉ करने में निकालने में, और फिर हम जैसे कि सफलता की तरफ बढ़ने लगे। तो दो यही युक्ति अपना है, मुक्ति की युक्ति है ना। तीसरी एक युक्ति है, सुबह जब हम अमृत वेला योग करते हैं तो अपनी रोज की दिनचर्या फिक्स कर लें, या तो पहले दिन रात को भी कुछ कर लें, और दोनों दिन की चीज की दिनचर्या, एक शरीर की दिनचर्या एक आत्मा की दिनचर्या। तो शरीर की दिनचर्या तो हम लोग फिक्स करने के आदि हैं, सेंटरों पर रहें या घर में रहें, भाई आज ये काम करना है, आज वहां जाना है, आज उससे मिलना है, अब ये प्रदर्शनी लगानी है मेला, तो ये काम करना है, वो शरीर की दिनचर्या तो हम लोग फिक्स करते हैं, मिलने भी जाते हैं, उसके तो काफी अभ्यासी हो गए हैं। लेकिन मन की दिनचर्या वो फिक्स करनी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मन हमारा बहुत भागता रहता है इधर उधर, और इस कारण से भक्ति मार्ग में भी कह दिया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौत में गंगा बोल देते हैं ना, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो इसीलिए दिनचर्या रोज यही बनाए, और दादी जानकी एक बार बता रहे थे कि भाई मैंने तो अपनी दिनचर्या ये बनाई हुई है, वर्षों तक चलती रही कि सुबह जब से उठते हैं तब से 8 बजे तक मैं बस मौन रहती हूँ, मेरा टाइम इधर उधर नहीं होता है। अब मौन रहना तो संभव नहीं है, कई बार क्लास के बाद ही स्टूडेंट्स से बातें करनी होती हैं, उनको कुछ कार्य देना होता है, कई बातें, लेकिन अपनी सहूलियत के मुताबिक जो जो घरों में रहते हैं वो तो इतना कर सकते हैं कि वो अपने को वो टाइम जो मुरली सुनी उस मुरली के मनन चिंतन में ही लगाए हैं, वो टाइम जो है उसमें जो बाबा चाहता है उस चीज के लिए हम पर्टिकुलर उस दिन का ताजा ताजा हलवा खाएं। दादी बाबा भी बोलता है ताजा हलवा खाओ, आज की जो मुरली है, मुरली की जो पॉइंट है, आज की मुरली तो सबने सुनी होगी ना, तो आज की मुरली की मुख्य पॉइंट क्या थी? स्नेह की शक्ति के द्वारा परिवर्तन। तो वो ही है कि परिवर्तन जब है तो सबसे पहला स्नेह हमारा किससे होना चाहिए? अपने से, क्योंकि हमारा स्नेह देहधारियों से और वो सबसे तो है, लेकिन अपने से पूरा स्नेह नहीं है तो अपनी तरफ उतना अटेंशन रहता नहीं है और इधर उधर दूसरी तरफ बुद्धि उसकी देदारियों से स्नेह हो जाता है, व्यक्तियों से जहां जिनसे बिजनेस डीलिंग है उनसे होता है आदि आदि। अगर अपने से स्नेह होगा तो हमारा कोई भी गुण शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि अपने से स्नेह है पहला 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 बाबा ये चाहता है कि देखो कि मेरा इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो दिनचर्या फिक्स करें और जहां तक हो सके उस दिनचर्या के अनुरूप अपने को चलाने का प्रयास करें, ये एक। और उसके लिए सारा दिन भर एक अभ्यास बार बार हम करें, याद का तो बाबा ने कहा ही है, लेकिन मेन चीज मैं करावनहार हूं, ये कर्मेंद्रियां हैं, मैं इससे ये कर रहा हूं। जैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, पेन होता है लिखते हैं, तो ये नहीं होता है कि भाई मैं पेन से नहीं लिख रहा हूं, ये मालूम नहीं है। मालूम है कि मैं इसके द्वारा लिख रहा हूं। ऐसे ही ये अभ्यास होना चाहिए कि मैं आंख के द्वारा देख रही हूं, मुंह के द्वारा बोल रही हूं, मैं हाथ के द्वारा ये कर्म कर रहे करावनहार हूं। बाबा मुझसे करा रहा है, जैसे शिव बाबा का बाबा ब्रह्मा बाबा अनुभव करते थे ना, बस बाबा जैसे इस तन ये घोड़ा है अपने को हुसैन का घोड़ा और बाबा जैसे शिव बाबा इस पर सवारी, ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर पर सवारी करते हुए इसके द्वारा ये कर रही हूं, करावनहार हूं। तो ये जितना युक्ति को हम अपनाते जाते हैं उतना उतना क्या होगा कि बिल्कुल ऐसी स्थिति का अनुभव होता जाएगा कि मैं डिटैच्ड हूं, शरीर डिटैच्ड है आत्मा से, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये हाथ अलग है, ये है। और वैसे भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं जब ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को कि भाई हाँ भाई पेशेंट को लाओ, और डॉक्टर काम करता है सब, लेकिन अनलकीली डॉक्टर के फेवर में वो दिन नहीं था तो पेशेंट की डेथ हो जाती है मानो, तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है, टेक द बॉडी आउट, इस बॉडी को अब बाहर ले जाओ। यानी आते वक्त वो पेशेंट था और जाते वक्त सिर्फ बॉडी रह गई, यानी कि वो आत्मा चली गई, यानी डेथ अगर हो गई तो बस। जब लौकिक दुनिया में भी इस बात का अभ्यास किया हुआ है टेक द बॉडी आउट, तो ये हमें भी अभ्यास होना चाहिए कि ये बॉडी और मैं आत्मा ये अलग है, तो एक ये अभ्यास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बाबा ने बताया कि अंत समय आप बच्चों के पास है, अब तैयारी भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए ना, जैसा इवेंट आने वाला होता है उसके अनुरूप ही हम तैयारी करते हैं। घर में मेला होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट मानव दादी का या किसी वरिष्ठ का आने का है, उसके अनुसार ही सब चीज होती है तैयारियां। तो ऐसे ही बाबा ने बोला अंत समय में ना, सब कौन सा पेपर सबके पास आएगा, कौन सा आएगा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध, और सबसे बड़े से बड़ा पेपर उसी को ही वो कह, ये है शरीर का पेपर, एक पेपर जितने अपने ब्रह्मा बाबा से लेकर मम्मा का दादियों का हर एक का देखें, क्योंकि 63 जन्मों के जो हिसाब किताब है वो चुकतू करने का तो साधन यही है ना, कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा तो ये शरीर के द्वारा, शरीर में अथाह तकलीफ होगी, पेन होगा, शरीर में याद नहीं कर सकेंगे। मुझे याद है जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो मैं मधुबन में ही था और यहाँ पर अपनी आंखों से बाबा का वो दृश्य देखने को मिला, किस प्रकार से बाबा ने शरीर छोड़ा दादी के हाथ में हाथ और आत्मा जैसे उड़ी। तो बच्चों ने फिर बाबा से पूछा, रोज भोग लगता था, तो दो तीन दिन के बाद कि बाबा आपकी आखिरी स्थिति कैसी थी वो बताओ, क्योंकि हम सभी को भी उस स्थिति से पार होना है। तो बाबा ने बताया कि बच्ची, और बहुत अंत में युद्ध चल रहा था, कर्म भोग का और योग बल का, क्योंकि शरीर में ना कर्म भोग बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर थे, बहुत तेजी से। अभी भी आप 18 जनवरी की मुरली पढ़ो और 18 जनवरी के बाद उसमें जो भोग के दृश्य, 13 दिन तक भोग लगा था, उसमें एक ये तीसरे चौथे दिन के उसमें ये है कि बहुत शरीर के अंदर पेन था, क्योंकि बाबा ने कई बार बताया भाई जाना तो सभी को है, तो सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी है? हाँ बोलो बोलो, हार्ट का। और वो ही बाबा को भी अनुभव हुआ, क्योंकि बस बाबा ने सब मुरली वगैरह चला के और पूरा बच्चों से छुट्टी लेके बाबा गए और बस कहा, हाँ बच्ची बहुत दर्द हो रहा है इधर। प्रकाशमणि दादी जी साथ साथ थे, तो दादी ने बोला कि बाबा आप यहाँ पर लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाते हूँ। जमुना प्रसाद भाई को बोला, मैं हम तो छत पर टहल रहे थे, क्योंकि बाबा ने एक दिन पहले ही मुरली में बोला था मधु बनाते हो तो इतनी यह छोटा हॉल इसका छत है, बच्चों को टहलना चाहिए, बेहद में बुद्धि चली जानी चाहिए इस तरह। तो उन्हें जाते हुए देखा तो जमुना प्रसाद भाई साइकिल लेके तेजी से निकल रहे हैं, तो हमने कहा, पूछा कहाँ जा रहे हो कि भाई ऐसे बाबा को तकलीफ हो रही है, और दादी ने बोला है मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तो वो गए और हम भी फिर नीचे उतर के, और पहले बाबा का कमरा जो है ऐसे बाहर से नहीं था, और पीछे की तरफ से गैलरी में से, जो पुराने हैं उन्हें तो मालूम होगा 70s में पहले वो था, बाद में बाबा का कमरे को बढ़ाया गया। तो बस बाबा जैसे चारपाई पर बैठे हैं, सामने दादी जी हैं, दादी जी से नैन मुलाकात करते हुए और हाथ में हाथ सर्व शक्तियों की विल करते हुए, जैसे बाबा छुट्टी ले रहे थे, वो हमें देखने को मिला पीछे की तरफ से, जहां ईशु दादी का ऑफिस हुआ करता था। तो ये शरीर का जो पेपर है ये अंतिम पेपर है। तो बाबा से जब बच्चों ने पूछा तो बाबा कह रहे थे, बच्चे शुरू में बहुत पेन था और भोगनाओं का जैसे पलड़ा भारी था और योग बल जैसे कम था, क्योंकि जब शरीर में बहुत दर्द होगा, वेदना होगी, तो उस समय बाबा याद आए या वो एकदम तो शुरू में होगा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो इतना अखंड योगी, तो भले यहाँ बहुत दर्द था लेकिन धीरे धीरे बाबा का याद का पारा चार्ट बढ़ता गया और ये वेदना, ये शरीर का दर्द कम होता गया और योग जो भोगना है वो कम होती गई और योग बल बढ़ता गया, और अंत में योग बल ने इन भोगनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और ये सभी को ही होना है। और इसमें मुझे एक मम्मा की बात याद आ गई, शायद आप लोगों में से बहुत कम ने सुनी होगी, कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो उसके बाद जब आत्मा ऊपर गई तो वहां पर देखा अव्यक्त बाप, तब तो साकार में बाबा थे, नीचे मधुवन में बाबा थे और ऊपर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास जब गए, मम्मा पहुंचे, तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुम क्या कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया वहां से करके आए? तो मम्मा का तो जैसे स्वभाव था शांत रहते थे, और फिर मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, वो क्या स्थिति होती है कैसे? तो बाबा ने कहा कि बच्ची जाओ नीचे जाओ, अभी तुम्हारा शरीर रखा है वहां पर हॉल में, और तुम जाओ शरीर में जाके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ और फिर बाबा के पास आके उसका अनुभव बताओ। तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, अनुभव करके आओ। तो मम्मा गई और फिर थोड़ी देर बाद जब लौट के फिर वतन में पहुंचे तो बाबा ने कहा, बच्ची अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, अनुभव तो नहीं किया। कि क्यों नहीं किया अनुभव? क्योंकि बाबा मैं गई तो शरीर तो तब तक जैसे ठंडा हो गया था, बिल्कुल शरीर में कोई भी चुरपुर नहीं हुई, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर पाई। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया और यहाँ आए तो अभी तो तुम्हें फिर से जाना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि परम धाम का गेट तो तभी खुलेगा तब जब जो वहां तो आत्मा जो संपूर्ण पवित्र होके जाती है, तो अभी जो बाकी है वो फिर से तुम्हें पुरुषार्थ जाके करना है। तो इसीलिए मामा आए, फिर बाबा ने भेजा और फिर पुनर्जन्म और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा चल रही है। तो भाव ये है कहने का कि हम सभी को कर्मातीत होकर ही जाना है, भले यहाँ पर कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, शरीर में व्याधि हो, बहुत कष्ट हो, लेकिन ये संकल्प कभी नहीं आना चाहिए कि बस मैं ये शरीर छोड़ू, कम से कम नया शरीर मिलेगा उसमें ये व्याधि नहीं होगी आदि आदि, नहीं। वहां तो जाके फिर से बच्चा बन जाएंगे और शुरू के 8-10 साल फिर वो सब वेस्ट चले जाएंगे, कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि हर हालत में मुझे संपूर्ण या कर्मातीत बन के जाना है, जैसे हमारी दादियों का और बाबा का लक्ष्य। हाँ, जाके पुनर्जन्म बने लेना पड़े थोड़ा बहुत, जो जरा सा हिसाब किताब है या उनके द्वारा जो सेवा करवानी है। मम्मा के द्वारा बाबा ने कई बार इशारा दिया है, देखो मम्मा आई थी, ज्ञान की देवी है, तो वो पूरा का पूरा जो है हो रहा है। तो अभी बाबा जो जाके वहां क्या चाहता है मम्मा से, कि मम्मा ने आके खाली हाथ आई थी, मम्मा ज्ञान की देवी बनी, विद्या की देवी बनी, सरस्वती, लेकिन मम्मा आई थी खाली हाथ, जैसे धन का नहीं करा। तो अभी जाके उन्होंने बहुत, जहां परिवार में जन्म लिया है बहुत रॉयल है, और कई रीति से बाबा ने कई बार टाइम टू टाइम इनडायरेक्ट कुछ इशारे दिए हैं, तो वो पूरा का पूरा जैसे बाबा ने कहा है, ये अब वो जैसे धन की समर्पण करा रही है और उसका श्रेय जैसे उस रीति से मम्मा को मिल रहा है। भाव ये है कि हम संपूर्ण बन के जाएं, जिससे हमें फिर पुनर्जन्म न लेना पड़े, इस शरीर के द्वारा ही संपूर्ण बन जाए। और इसके लिए बाबा ने बताया कि बच्चों को दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि कई प्रकार की परिस्थिति, अभी ये परिस्थिति जो चल रही है कोरोना वाली, ये कभी 6-8 महीने पहले किसी ने सोची थी क्या? किसी को कल्पना भी नहीं थी। और कितना ज्यादा पूरे दुनिया भर में इसका स्वरूप फैल गया। तो बाबा ने बताया कि अभी जो है आवश्यकता दो शक्तियों की विशेष बच्चों को पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियां बहुत और भी विकट होने वाली हैं। अभी सुना होगा मोनी बहन का भी मैसेज, न्यूयॉर्क की जो मोनी बहन है उनसे समय प्रति समय बाबा खींचता है और बाबा उनके द्वारा जो कुछ मैसेज देने होते हैं उनके द्वारा देता है। तो अभी तो ये कुछ नहीं है, रिहर्सल है, अभी तो बहुत बहुत विकट परिस्थिति आनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? दो शक्तियों की जो विशेष आवश्यकता है, एक है परखने और निर्णय करने की शक्ति, ऐसी चीज परिस्थितियां आएंगी जिनको हम समझ नहीं पाएंगे क्या करें कैसे करें, तो उस वक्त अगर हमारी परखने या निर्णय करने की शक्ति क्लीन और क्लियर होगी तो हम सही रास्ते पर हमारे कदम बढ़ा सकेंगे। तो इसीलिए और ये इनसे व्यर्थ से अगर हमें मुक्त होना है, हमारा टाइम ही इसी में चला गया, अगर क्या करें कैसे करें, ये ऐसा हो रहा है मानो एकदम फ्लड आ गया, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं तो आनी है, तो जब बहुत आएंगे क्या करें कैसे। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों का बुद्धि योग क्लीन और क्लियर होगा, मेरे से लाइन क्लियर होगी, तो उनके सामने ये परिस्थिति इस रूप में नहीं आएगी, उनके पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी। तो इसीलिए जहां पर सेफ्टी हो ऑटोमेटिकली पैर बढ़े। बाबा ने कहा मेरा बच्चा कोई भी ना, इस तरह सभी बच्चे जो है कौन है, महाभारत प्रसिद्ध भीष्म पिता में, अगर मानो अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आया, सुनामी आई या बहुत भूचाल वगैरह, और दुनिया वाले सब मर रहे हैं त्राई त्राई, और हम भी उनमें से एक हैं, हमारी भी अगर वैसे ही शरीर छोड़ा तो दुनिया में और हम में फर्क क्या हुआ, इतने साल तक हमने क्या किया। तो उसको हम ये देखें, हमारी बुद्धि की लाइन जितनी क्लीन क्लियर होगी तो हमें ये परिस्थिति नहीं आएगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या करें कैसा करें। ऑटोमेटिकली बाबा बस एक ही लाइन ऑफ एक्शन सुझाएगा और हमारे पैर उधर बढ़ते चले जाएंगे, जैसा कच्छभुज में भी हुआ, हमने देखा कई बार, हमारा तो मधुबन से काफी पहले भी आना जाना बहुत रहा। तो इसीलिए बाबा बच्चों को ऐसा युक्ति चाहता है कि हम भी सब भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान लेके, जैसे ब्रह्मा बाबा भी इच्छा मृत्यु के वरदान से फिर ऊपर गए। तो ब्रह्मा बाबा जब जा सकते हैं वो भी साधारण गृहस्थ और भगवान का बाद में रथ बने, हम सब को बाबा को फॉलो करते हुए हम सबको भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना है। जब हम चाहें, जैसे ब्रह्मा बाबा को ना, हमें याद है मैं 17 जनवरी को आया और आसाम में पोस्टेड था इंजीनियरिंग करने के बाद, तो बस बाबा ने युक्ति से बुला लिया और 17 और 18 जनवरी को हमने बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखी, अपनी आंखों से देखी। और पहले तो जब भी मिलते थे बाबा कहते थे हाँ बच्चे आओ, समाचार सुनाओ, क्या सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ है आदि आदि, लेकिन उस समय उन दो दिनों में बस बाबा एक अक्षर भी नहीं बोला। बाबा के सामने जाते थे, बाबा नैन मुलाकात करते थे दृष्टि देके, और बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक अक्षर प्रश्न भी हम पूछ नहीं पाते थे, बाबा दिल की बात समझ जाते थे और तुरंत ही उसका समाधान स्वरूप में उत्तर दे देते थे। तो 17 और 18 जनवरी को ऐसे 5-6 बार बाबा से मिले, लेकिन हर बार ऐसा हुआ कि बस बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, कभी पुरुषार्थ की बात, कभी सेवा की बात, कभी और वहां पर कि जहां पर पोस्टेड थे कैसी क्लास चल रही है आदि आदि, वो सब पूरा का पूरा बाबा। तो ये है कौन सी बात, कौन सी अवस्था, मन जीते जगत जीत। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था, व्यर्थ के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया था कि व्यर्थ एक भी नहीं वो ही संकल्प आता था जो सिद्ध होने वाला होता था। इसीलिए जब वो हो गया वैसी स्थिति, अब बाबा ये चाहता है कि हमारी भी ऐसी स्थिति हो जो कोई भी दुनिया वाले आए हमारे सम्मुख आए, कोई भी भावना कोई इच्छा संकल्प लेके आए, हम उनके मन के भावों को पढ़ लें और तुरंत उसका समाधान उनको दे सके। और ये कब होगा, जब हमारी खुद की व्यर्थ के ऊपर कंप्लीट रीति से हमारा कंट्रोल होगा। तो एक ये स्थिति हमें लानी है, परखने और निर्णय करने की शक्ति स्थिति आई और हम परख लें कि ये व्यक्ति कैसा है, ये परिस्थिति कैसी है, और तुरंत ही अगर हमने परखने और निर्णय की शक्ति हमारी सही होगी, और ये कैसे सही होगी परखने निर्णय की शक्ति, ये एकाग्रता से, जितना जितना हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एकाग्र होगा और उतना उतना हम परखने और निर्णय शक्ति में हासिल माहिरता हासिल करते जाएंगे और सही समय पर हमें सही चीज टच होगी ऑटोमेटिकली। तो एक ये शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति, इन दो शक्तियों की हमें अंत समय बहुत आवश्यकता है। पहले परखें, सही परख लिया, परखने से क्या होगा, अब परिस्थिति ऐसी है तो उसका सामना भी तो हम सफलतापूर्वक कर सकें। तो इसीलिए वो सामना करने की शक्ति जो बाबा ने कहा है वो बच्चों को अपने अंदर धारण करनी पड़े। और वो कैसे आएगी सामना करने की शक्ति, हर परिस्थिति में हम सफलतापूर्वक सामना कर सकें, उसके लिए बाबा के साथ सदा कंबाइंड स्थिति का अनुभव। बस मैं बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ, और जब मैं कंबाइंड हूँ तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि को वो टच करेगा जो उस परिस्थिति में सामना करने के लिए सबसे अमोघ अस्त्र होगा। अस्त्र माने स्थूल अस्त्र नहीं, उस समय जो लाइन ऑफ एक्शन हमें लेनी है, लेकिन ये तब होगा जब हम कंबाइंड रूप में होंगे बाबा को। हम होता क्या है, जब कोई परिस्थिति आती है ना, हम लौकिक में याद करते हैं फलाना भाई फलाना बहन, उसके बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं, ये बाबा बाद में याद आता है कई बार। इसमें वो द्रौपदी वाली भी कहानी सबने सुनी हुई है, ये द्रौपदी ने जब कहा कि हे प्रभु आपने आने में बहुत देरी करी और मेरी लाज लुट रही थी, तो भगवान ने कहा, ऐसा कहानियों में आता है कि देखो तुमने पहले अपने किसको याद किया, पतियों को याद किया वो सिर झुकाए बैठे रहे, और तुमने पिता माँ को याद किया, गुरु को याद किया, सब, जब कोई कुछ नहीं कर सका, और अंत में जब तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा तो मैं तुरंत आया और तुम्हें ये ऐसा ये दान दिया साड़ी का। तो भाव क्या है कि इस चीज में, कि ये दोनों शक्तियां हमें अभी कुशाग्र ज्यादा करनी है। परिस्थितियां जो आए देखना है, चेक कि परखने निर्णय की, और उसके बाद देखें कि क्या मेरा निर्णय सही था इस परिस्थिति में। अगर नहीं भी होगा तो धीरे 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 करते हुए लंबे समय तक वो सही निर्णय की आदत पड़ जाएगी, और फिर सामना करने की शक्ति, ये दो शक्तियों की बहुत विशेष आवश्यकता होगी। और अंत समय में ये जो के, क्योंकि हमारी सारी तैयारी उस एक अंत समय के लिए हो रही है जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, अंतमति सुगति का गायन है, तो इसमें हमें ये देखना है। और भारत में तो बाबा ने बताया ही है कि कोई एटम बम हाइड्रोजन बम से इतना वो नहीं होगा, बल्कि ज्यादा किससे होगा, हाँ सब बताओ, अर्थक्वेक, ये जितने नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वार, इन दो से ज्यादा विनाश होगा। तो इन दो के अनुरूप हमें अपने को तैयार करना विशेष बहुत जरूरी है। तो दो के अनुरूप क्या, एक तो हम ये परिस्थितियां, ये जो पांच तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनको हम अपना इतना मित्र बना लें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी बना लिया था कि बस हर एक के साथ चल सके। मानो फ्लड आता है कहीं, जल का आता है, तो जल के अनुरूप बनाने के लिए हमें कौन सा साधन अपनाना पड़ेगा, फ्लड आए चारों तरफ से पानी पानी आए, लेकिन हमें पहले से टच हो जाए और हम सेफ्टी से निकल जाए। कैसे होगा? देखो उन दो तत्वों, उन दो व्यक्तियों में भी ज्यादा मित्रता कब होती? आप सब तो अनुभवी हो ना, क्लास करते हो, क्लास के बाद भी हो गए, नीचे अलग घर जाते जाते भी कुछ लोग आपस में बात करते हैं, दो चार जिनमें संस्कारों में कुछ निकटता होती है, वो आपस में ज्यादा मिलजुल। ऐसे हम अपने संस्कारों को तत्वों के अनुरूप बना लें तो तत्व वो तब हमारी रक्षा करता रहेगा। जल तत्व है, मानो जल तत्व में बहुत संस्कार होते हैं, हाँ बहुत गुण है, शीतलता का भी गुण है जल में और क्लैरिटी का भी है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा गुण कौन सा है? एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। देखो गिलास में जल तत्व को लिया, गिलास के अनुरूप बन गया, कटोरी में लो कटोरी के अनुरूप बन जाएगा, तो इस तरह चम्मच में लो तो चम्मच के अनुरूप। ऐसे ही हम हरेक से एडजस्ट होके चल सके, ये ना कहें कि भाई फलानी बहन से तो मेरा नहीं बनता है, हाँ फलानी दूसरी बहन से बहुत अच्छा है। हरेक के साथ एडजस्ट होके अपने को चला सके और हर भाई बहन के साथ, तो अगर एडजस्टमेंट की ताकत आ गई, शक्ति आ गई हरेक के साथ, तो जल में भी तो एडजस्टमेंट की ताकत होती है, गिलास कटोरी चम्मच थाली सबके अनुरूप अपने को एडजस्ट कर ले। तो अगर हमने एडजस्टमेंट की ताकत धारण कर ली तो फिर ये सबसे बड़ी युक्ति है उस परिस्थिति से बचने की। जल कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, समय के अनुरूप वो बताएगा ऐसी। और हर एक में बहुत गुण है वो आप सब लोग जानना, जल में क्लैरिटी का संस्कार है, अर्थ में पृथ्वी में कौन सा संस्कार है? सहनशीलती। और पृथ्वी दाता है, धरती से सब चीज मिलती है, गेहूं चावल अनाज फल फूल सब चीज धरती से ही मिलती है, धरती दाता है। ऐसे हम अपना संस्कार दाता का बना लें, हर एक को देते चले। कोई स्थूल चीज की बात नहीं है कि कपड़ा पैसा अन्न, इसमें तो लिमिटेशन हो सकती है, कौन कितना गरीब है ना अमीर है, नहीं। प्रेम शांति सहयोग, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, जो कोई भी हमारे पास आए भरपूरता की अनुभूति करके जाए, इनसे मुझे ये मिला है। तो अगर हम में दातापन का गुण हुआ, हम बिल्कुल दाता बन के ये सहयोग शांति गुण ये सब देते चले, जिनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो धरती में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे कुछ भी होगा, वो धरती हमारे दुख अशांति या मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। इसी तरह और वायु में कौन सा गुण होता है? वायु में हल्केपन का गुण होता है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। तो देखो पृथ्वी, जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है, दोनों में उल्टे गुण हैं, लेकिन दोनों कितने सहयोग से रहते हैं। पृथ्वी नीचे खींचने का गुण, वायु में ऊपर उठाने का गुण, लेकिन दोनों जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है। इसी तरह हमारे परिवार में या संबंधी में जिसमें भी रिवर्स गुण हो, बिल्कुल संस्कार न मिलते हो, लेकिन हमें सह अस्तित्व की भावना से रहना ही रहना है, जैसे पृथ्वी और वायु ना सह अस्तित्व से रह रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी हमारे अंदर ये न हो कि इसके साथ मैं कैसे चलूं, नहीं, हमें एडजस्ट होके वो चलना। तो ये वायु का गुण हो गया। वायु की तरह अगर हमने हल्का रहना सीख लिया, कोई परिस्थिति आए हमें भारी न कर सके। कई बार भारी हो जाते हम, उस पर वो परिस्थिति तो चली जाती है लेकिन हमारे अंदर भारीपना छोड़ जाती है, तो क्या होगा? फिर हम वास्तव में वायु को अपना मित्र नहीं बना सके जैसे, और वायु की तरह हल्के रहना सीख जाएंगे तो चाहे जितना साइक्लोन आएगा, बहुत तेज हवा चलेगी, आंधी होंगी, पेड़ उखड़ेंगे, लेकिन ये वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकेगी। क्यों? क्योंकि वायु को हमने जैसे अपना मित्र बना लिया। इसी तरह आकाश, पांचवा तत्व, आकाश में क्या विशालता है, कितनी विशालता है, चारों तरफ एक ही आकाश है पूरे पृथ्वी। लेकिन इसी तरीके से हम आकाश की तरह विशाल हृदय वाले बने, किसी की कोई कमी कमजोरी हमारे हृदय के अंदर न रहे, उसको हम क्षमा कर सके। और ये क्षमा का गुण बाबा में, मामा में और दादियों में कितना बड़ा था, हम तो चूंकि साथ रहे हमने देखा। थोड़ी देर पहले हुई भी बात, इतने झगड़े की बात होगी, थोड़ी देर में भूल जाते थे, बिल्कुल जैसे हुई नहीं। और ये क्षमा करने का अगर गुण आ गया, सबसे बड़े से बड़ा गुण महान आत्माओं का यही है, क्षमा कर देना। बस कमी तो सब में ही है, लेकिन कमी को देख के हमारे अंदर भी अगर बदले की भावना या कोई ऐसी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निगेटिविटी आई, तो हम तो महान नहीं बन पाएंगे। वो भले धीरे धीरे अपनी कमजोरी को दूर करके महान बन जाए, हम तो रह जाएंगे वैसे ही। तो इसीलिए आकाश की तरह हम अगर ये विशालता का गुण धारण कर लेंगे, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम होगी, अति वृष्टि हो, अति गर्मी हो, अति सर्दी हो, ऊपर से रॉकेट आए, मिसाइल आए, बम आए, वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमने आकाश जैसी विशालता धारण कर ली, और आकाश हमें अंत समय में ही पूरा का पूरा सहयोग देगा, अंत समय तक। और अंतिम शक्ति एक पांचवा, जैसे सूर्य, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। अग्नि में कौन सा गुण होता है? अग्नि में मतलब रूप बदलने का गुण। अग्नि में कोई भी चीज डालो, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी बाबा ने कहा है, आपका स्वरूप ऐसा हो। कौन सा स्वरूप बाबा बोलता है? ऐसा अग्नि, योग अग्नि का स्वरूप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी स्वरूप होगा, तो अंत समय में परिस्थितियां ऐसी होंगी कोई किसी को वर्णन नहीं कर पाएगा। अभी भी देखो जा नहीं पाते हैं, अभी तो फिर भी इन चीजों से तो बात कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन ये मोबाइल बंद हुआ और बाहर तो जा ही नहीं सकते मानो किसी परिस्थिति से, तो क्या होगा? और ये हो सकता, हम लोगों को बताया गया था, पढ़ाया गया था इंजीनियरिंग में, कि जब नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ के ना रिवर्सल ऑफ पोल हो जाते हैं, तो सारे कम्युनिकेशन के साधन एकदम जीरो हो जाएंगे। तो इस कारण से तब हमारी ये क्लियर और क्लीन बुद्धि काम करेगी, टेलीपैथी ये काम करेगी। तो इसीलिए बाबा कहता है इसको अपना इतना क्लियर बनाना। अंत में लोग आएंगे हमारे सामने, आए और रोते हुए आए, हंसते हुए चले जाए। हमारा स्वरूप ज्वालामुखी, ऐसी योग अग्नि की ताकत हो कि उनका रूप बदल जाए, अशांत आत्माएं शांति की अनुभूति करते हुए चले जाए, दुखी, अशांत, ऐसी ऐसी आत्माएं, तो वो तभी होगा जब हमने वो स्वरूप धारण किया होगा। तो अगर हम आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहते हैं, विघ्नों से मुक्ति चाहते हैं, और उनकी ये कुछ जो बाबा ने युक्तियां, कुछ शक्तियां बताई हैं, ये धारण करेंगे, तो जरूर बाबा तो हमें अपने साथ लेने के लिए आया है, बाबा साथ ले जाएगा और हम सब सफल होकर के बाबा के साथ चले जाएंगे। तो इसीलिए जहां एक तरफ मन को स्वच्छ बनाना जरूरी है, मन को में व्यर्थ संकल्प न आए, समय संकल्प, वहां इन तत्वों को भी स्वच्छ बनाना जरूरी है। इन तत्वों के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है, भले अलग अलग शरीर मिलेंगे हर जन्म में, लेकिन होंगे तो इन पांच तत्वों के ही बने ना, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो इसीलिए इन तत्वों को ये हमें अंत समय शरीर छोड़ते वक्त पूरा सहयोग दें, ये तभी हो सकता है जब इन तत्वों से हम अभी मित्रता करें और इनको अपने अनुरूप चलाना सीखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
Thank you.